ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कला शासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी महाराज जी के द्वारा संस्थापित यह अध्यात्म विद्या आह्वान मुंबई में प्रातः साध्य प्रवचन कार्यक्रम के प्रारंभ में उनके द्वारा रचित यह ब्रह्मास्मि माला का 500 का पाठ करेंगे। मेरे साथ मिलकर के पाठ करना। विवेच्य भूति पूर्णंत विचार्य चिति पूर्णकम् विलोक्यानंद पूर्णंत ज्ञातो ब्रह्मास्मि तन्मयः विद्या विद्या विरोधेपि स्वरूपं न निवर्त्यते तत्त्वमेव तया तस्यात् तत्त्वं ब्रह्मास्मि संस्थितम् दावेन दह्यते दारु रज्जुना बध्यते पशुः न स्वं किन्त्वन्तरात्मा तु सोऽहं ब्रह्मास्मि चेतन नश्यति हिममुष्णेषु वर्षासु लवणादिकम् नाहं हिमं न सामुद्रं घनं ब्रह्मास्मि कालकृति सत्त्वं ज्ञानं सुखं स्वत्वं स्वातन्त्र्यं चेतसामतो लिप्सा स्वाभाविकी तस्या मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते मया ब्रह्मास्मि लिप्स्यते। ब्रह्मलीन स्वामी जी के निर्वाण दिवस के पश्चात प्रारंभ हुआ प्रस्थानांतर ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ प्रातः स्वाध्याय प्रवचन में और सायंकाल में भी गीता चिंतन माला कार्यक्रम के अंतर्गत यह लगातार चलेगा ज्ञान यज्ञ। काल अपराह्न में भी हुआ था, आज इसके बाद भी अपराह्न में चलेगा ज्ञान यज्ञ चले यार श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ। कल करण्या संगन्या आदि होकर के प्रथम अध्याय में श्लोक हो गए थे, एकादश श्लोक हो गए थे, द्वादश श्लोक चलेगा। अभी भीष्म पितामह समाप्त होने के बाद सरसज्जा में आने के बाद संजय जाकर के धृतराष्ट्र के पास बताया तो धृतराष्ट्र ने बहुत दुख प्रकट करके कैसे ऐसे हुआ, थोड़े व्याकुलित होकर के बहुत प्रश्नोत्तर हुआ। उसके बाद फिर तब तक गीता का उपदेश हो गया था, युद्ध होकर के भीष्म सरसज्जा पर आ गई, उसके बाद संजय धृतराष्ट्र संवाद है तो धृतराष्ट्र प्रश्न करने पर क्या क्या मेरे बच्चे और पांडव ने, तो उसके उत्तर देते हुए संजय ने युद्ध के प्रारंभ में कैसी स्थिति ये बता रहे हैं। और वहां उनकी सेना को पांडव की सेना को देख करके दुर्योधन भय से व्याकुलित होकर के आचार्य के पास द्रोणाचार्य के पास पहुंच करके बताया अपने पक्ष में कौन है उनके पक्ष में कौन है। अंत में कह दिया भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैव हि भीष्म पितामह की रक्षा करे सब अपने अपने स्थान में रह करके। ऐसे इनके संवाद को देख करके भीष्म पितामह को लगा ये डर करके इधर आकर कुछ बात कर रहा है द्रोणाचार्य पास, समझ गए तो इसलिए उसको थोड़ा प्रसन्नता की उसकी प्रसन्नता के लिए भीष्म पितामह अपने कार्य देखा करते हैं। आगे श्लोक तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। गुरुवृद्धः प्रतापवान पितामह तस्य हर्षं संजनयन सिंहनादं विनद्य शंखं उच्चैः दध्मौ। ऐसा अन्वय करते हैं, प्रथम कर्ता पद है, अंत में क्रियापद रहता है, मध्य में कर्म आदि रहता है। इसमें कर्ता है पितामह प्रतापवान कुरु वृद्ध, गुरुणाम वृद्ध, गुरुवंश में वृद्ध से सबसे अधिक उम्र वाले और बलवान ज्ञानवान सौम्य श्रेष्ठ है। पितामह भीष्म पितामह बड़े प्रतापी है, प्रतापवान प्रतापयुक्त प्रतापी प्रतापवान गुरुवृद्ध पितामह तस्य हर्षं संजनयन संजनयन तस्य कस्य दुर्योधनस्य दुर्योधन भय से व्याकुल होकर के अंदर डरते डरते बाहर दिखाता है भय नहीं करके उनके उनकी सेना अपनी सेना बताते दिया किंतु उसके भय से निवृत्ति के लिए तस्य हर्षं सम्यक जनयन जैसे सिंहनाद शंख बजाया तो उसके हर्ष हो जाए खुश हो जाएगा। पितामह जिसके पक्ष में है अरे वो साथ देते हैं तो क्या भय करना है। छोटे बच्चे अपने माता को सबसे बलवान मानती है, माता के पास है तो कोई भय नहीं, आगे कोई कुछ कहेगा तो मैं मम्मी को बता दूंगा मालिक के नौकर नौकरानी उसके बच्चे लेकर आके वो खेलता है और मालिक के बच्चे दोनों खेलते हैं, दोनों खेलते हैं तो कभी मालिक के बच्चे उसको कुछ मुझे मेरी मम्मी को बता नौकरी रानी के बच्चे बोलती है मैं मम्मी को बता दूंगा तुमको पिटाई करेगा, वह मैं मेरे मम्मी को बता दूंगा मेरे मम्मी तेरी मम्मी को भी पिटाई करेगा। कौन बोलता है? नौकरानी के बच्चे बोलता है मेरे मम्मी तुझे तो पिटाई करेगा तेरे मम्मी को पिटाई करेगा तेरे बाप को भी पिटाई करेगा उस वक्त मेरे मम्मी जैसे बलवान कोई दूसरा है ही नहीं। छोटे बच्चे अपने माता को उस बात पिता उनसे बलवान कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं मानता, उनके पास चला गया तो सब रक्षा करेंगे। भीष्म पितामह अपने तरफ में है तो क्या भय है, प्रसन्न हो जाए। हर्षक उत्पन्न करते हुए संजने सम्यक जने ऐसा सिंह व नाद उच्च कर कब जाया जैसे उसको खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए। सम्यक उत्पन्न करते हुए हर्षम हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंहनादम विनद्य उच्च शंख दध्म दध्म है क्रियापद बजाया फूंका शंख को कैसा शंख बजाया उच्च ही बहुत उच्च स्वर से जोर से बजाए उच्च ही ऐसे श्लोक बोलते समय थोड़ा उच्च से बोलना धीरे नहीं ऐसे भगवान के भजन करते समय श्लोक बोलते समय प्रमाद नहीं करना चाहिए आलस्य नहीं करना चाहिए शर्म भी नहीं होना चाहिए अच्छे तरह से और गलती भी नहीं करें और आगे दौड़े भी नहीं श्लोक मिल करके बोले। अगर हमको आता है करके हम पहले बोल देंगे आता है तो बहुत को बोल भी सकते बहुत अच्छा ही बोल सकते किन सबके साथ मिलकर बोलने का ये भी अभ्यास करना पड़ता है। जब मिलकर नहीं बोलते हैं ना उनकी त्रुटि रह जाती है सारा जीवन भर वो सबके साथ नहीं चल पाती है। हमने देखा कोई कोई महात्मा ऐसे ही है उनको आदत है अंत में नहीं बोले किन्तु पहले बोलेंगे और सबका पूरा होने के पहले ही आगे शुरू कर देंगे तो सबको विक्षेप होता है सब देखेंगे कौन बोलता है क्यों बोलता है करके तो वे सबके साथ मिलकर बोलना आगे नहीं बोलना मिलकर बोलना और कंठ मिला करके एक साथ बोलना तो उच्च से ध्यान भगवान का चिंतन करे। ये जो भीष्म पितामह तो महान प्रतापी है उनके शंखों को ऐसे बदल जाया कैसे सिंहनादम सिंहनादम बोलते समय सिंह ह यहां कोई कोई उच्चारण करते तो सिंह कह देते घ कह देते घ नहीं सिंह अनुस्वार है सिम कोई कोई ओष्ठ को लगा देते सिम ह कह देते वो भी गलत है सिम म को ओष्ठ को लगा दिया तो गलत हो गया अनुसार सिंह ह सिंह ह सिंह ह नादं बोलो सिंह ह नादं सिंह ह नादं एक एक अक्षर का उच्चारण अलग से करना सिंह ह ना दं ऐसे बोलो सिंह ह ना दं सिंह ह ना दं सिंह ह ना दं विनद्योच्च हाँ नहीं तो प्रमाद वंशी क्या होता है कोई सिंह कर देते वो गलत है तो ह को घ कर देंगे वो भी गलत है। सिंह अनुसार अनुसार का उच्चारण नाक से होता है उष्ट से नहीं सिंह ह ना दं सिंह ह ना दं सिंह के जैसे सिंह का जैसे नाद शब्द होता है इस जोर से बजाया सिंह के नाम से भी लोग डर जाएंगे देखे नहीं पड़ता तो कहना क्या और उसके शब्द से तो सुना और क्या है ऐसे भी नद्य जोर से उच्च ही शंख जोर से शंख को बजाया प्रतापवान कुरुवृद्ध पितामह करता है। बोलो श्लोक तस्य संजनयन हर्षं ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यः न्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत् जो भीष्म पितामह का शंख शब्द उनकी ध्वनि सुनाई पड़ी ततः उसके बाद शंखाश्च भेर्यश्च दुर्योधन का अभिप्राय समझ करके भीष्म पिता ने मैंने शंख शब्द ध्वनि जोर से दधमऊ से अनाद ध्वनि फूंक दिया जोर से शंख को उनके बाद उसके बाद अन्य सब जितने शंखाश्च बहुवचन सब अपने अपने शंख बजाने लगे। भेरिय भेरी विवाद के नाम है पनवा पनवा आनक गोमुख ये सब वाद्य का नाम है ढोल मृदंग नगरे ये पनवानक नरसिंह गोमुख है सहसा एव अभ्यहन्यंत शीघ्र ही सब बजने लगे अपने आप बजने के सब बजाने लगे सब बजने लगे इनके शंख ध्वनि होते ही सब ने गर्जन करने लगे सबका वाद्य वादन मिलकर बड़े शब्द हो गया सशब्द तुमुलो अभवत तुमुल भयंकर हो गया बड़ा भयंकर हो गया सब मिलने में बजाने लगे एक कोई बजाने पर इतने हो जाता है कोई कोई बोलेंगे शब्द करेंगे इतने जोर से बोलते थे सबको विक्षेप हो जाता है श्लोक बोलते सर नहीं बात करते समय कोई कोई जोर से बोलेंगे तो विक्षेप होता है ना और कोई वाद्य बजाएंगे और सब लोग बजाने लगे युद्ध क्षेत्र में इतने रण शब्द ध्वनि सब सब शंख मृदंग भेरी ढोल सब बजाने लगे एकदम तुम भयंकर हो गया शब्द श्लोक बोलो ततः शंखाश्च भेर्यश्च ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव देव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः यहां तक सब शब्द हो गया सब दुर्योधन के तरफ से भीष्म पितामह के शंख ध्वनि के पश्चात और सब बजाने लगे तुमुल भयंकर हो गया। इसके बाद ततः उसके बाद श्वेतैर हयैर युक्ते महति चंदने स्थितो श्वेत शुक्ल वर्ण वाले हय घोड़े शुक्ल सफेद वर्ण वाले घोड़े से जुते हुए महति स्यन्दने मड़े रथ है रथ में स्थित दो स्थित दिवचन दो कौन माधव पांडव शैव माधव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है तो पंडु के पुत्र सब को पांडव कहते हैं यहां अर्जुन है उनके रथ में माधव पांडव शैव दिव्य शंख प्रधात्मा तो शंख दोनों बजाए यहां शंख का विशेषण दिव्य पहले तो आया केवल शंख बजाए भीष्म पिता ने वह शंख बजाया जोर से बजाया और अन्य लोग सामने शंख बजाने लगे तथा शंखाश्च शंख बजाए किंतु यहां ये दो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों दिव्य शंख दोनों दिव्य दोनों का दिव्य शंख बजाए पद्मा तो विशेष हे भगवान जो शंख बजाएगा अन्य शंख के भेद भेदते हैं और उनके भक्त उनके पास बैठने वाले उनका भी शंका वो भी दिव्य है, रथ भी दिव्य है, नाम भी दिव्य है, सब दिव्य ही है। दिव्य उशंक मत हो, इतने देखा दिव्य कह दिया, उनका नाम भी है आगे कहेंगे। श्लोक बोलो, तत श्वेतेर पांचजन्यं हृषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दध्मौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ऋषिकेश पांचजन्यम दध्मौ, दध्मौ बजाया, दध्म फूंकना, शंख को बजाना फूंकना, भगवान ने जो शंख का वो बजाया उसका नाम पांचजन्यम। और धनंजय देवदत्तम, अर्जुन के शंख के नाम देवदत्तम। दे संजय बोलते निरपेक्ष होकर बोलते ही कि इनके शंख का नाम देते हैं और विशेषण है, नाम है और विशेषण देते, नाम दिव्य शंख है विशेषण दिया और उनका नाम प्रसिद्ध है, सबको मालूम है। ये नहीं कि संजय ने नाम रखा, ऐसा नहीं है, नाम है प्रसिद्ध और उनके शंख का नाम कुछ है ही नहीं। उनके शंख बजाने लोग भयंकर शब्द हो गया, ठीक है, किन्तु इनके शंख है, दो धन का नाम दिया धनंजय। और भीमकर्मा वृकोदर महाशंखम पौंड्रम दद्मऊ, ये तो दोनों रथ में थे, दो बजाए। भीमकर्मा, भीम कर्म यस्य, भयंकर कर्म करने वाले, जहां कोई नहीं कर पाएगा वहां भीम तैयार हो जाएंगे। भीमकर्मा, भीम है उनका नाम, भीमकर्मा भीम भयंकर कर्म करने वाले, ब्रुकोदर भीम है, पौंड्र महाशंखम पौंड्रम तत्व, बड़ा शंख है, महाशंख बहुत स्वयं भयंकर कर्म करने वाले, उनके शंख है महाशंख, उसका नाम है पौंड्रम, उसका भी नाम है, उसको भी बजाया, जोर से बजाया। ओ पांचजन्यं भगवान के शंख के बाद अभी पांडव के कितने शंख बज गए, गलत हुआ, भगवान शंख के बाद पांडव के दो बज गए। अभी आगे अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ कुंती पुत्रो राजा युधिष्ठिर अनंत विजयम दध्मऊ, क्रियापद आ जाएगा पूर्व से अनुमति, दध्मऊ बजाया राजा युधिष्ठिर है, राजा है युधिष्ठिर, आगे राजा बनने वाले वही राजा है वास्तव, वो तो राजा डरपोक था, आचार्य के पास चला दुर्योधन, वो क्या राजा है जो डर करके रण क्षेत्र में डर के भाग गया, ये तो वस्तु तो राजा है जो कुंती पुत्र, एक कुंती के पुत्र ऐसे युधिष्ठिर, वो बजा कौन शंख का नाम क्या अनंत विजय, शंख का अनंत विजय, विजय उनका अनंत अंत नहीं, इतने ही सबको विजय करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर। नकुल सहदेवश्च और दो रहे थे वो भी शंख बजाय, उनका भी ना शंख का नाम है सुघोष मणिपुष्प को, सुघोष और मणिपुष्प का नाम को दो, सुघोष नाम स है नकुल का, सहदेव का मणिपुष्प को, दोनों शंख बजाए। अभी पांच पांडव में पांचों के शंखों का पांच नाम अलग अलग है, अब भगवान शंख का नाम क्या है, है? पांच जन हाँ ये छह शंख सौ का नाम है, सब हो जाए। ओम अनंत विजयं राजा पंचदश श्लोक में जैसे आया पांचजन्य ऋषिकेशो, पहले बताया था, अभी थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ ऋषिकेश कोई कर देते विसर्ग बोलते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेश ऐसा कोई पदच्छेद कर बोलते हैं, कहते हम स्पष्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं अशुद्ध है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जैसे लिखा है अपने बुद्धि लगा करके अलग करना उचित नहीं। यहाँ केशो आगे देवदत्त दे द है, द के पहले विसर्ग होता नहीं है कहीं भी संस्कृत में, आगे में द वर्ण रहेगा तो पहले विसर्ग नहीं होगा, विसर्ग होने के लिए आदमी क्या चाहिए, पूरा विराम हो, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, पूर्ण विराम हो, नहीं तो ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स, ये वर्ण रहेगा तो विसर्ग होता है। सूत्र क्या है, खर वसानयोर विसर्जनीय, खर पर हो तो विसर्ग होता है, व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं, नियम पर में रहेगा तो जितने को इतने थोड़ा ज्ञान नहीं वो अपने विसर्ग बोल देते हैं, यहाँ विसर्ग होता है नहीं, विसर्ग वहां ऊ होकर के गुण होकर के हसीचे के सूत्र लगता है, ऋषिकेशो बनेगा, कभी ऋषिकेश देवदत्त ऐसा नहीं होगा, इसे ऋषिकेश कर देना अशुद्ध है, और जितने हो सकता है अशुद्ध उच्चारण नहीं करे। अभी ये भगवान महाभाष्यकार ने, पतंजलि महर्षि ने, महाभाष्य पाणिनि महर्षि के सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका नाम महाभाष्य, अन्य सब आचार्य छह दर्शनिक आचार्य के ऊपर भाष्य है, सब भाष्य है, पाणिनि महर्षि दर्शन तो नहीं अलग व्याकरण, उनके जो भाष्य है पतंजलि महर्षि ने लिखा, महर्षि पतंजलि कोई सामान्य नहीं, उनके भाष्य का नाम महाभाष्य, उन्होंने कहा न मृच्छित अभी मृच्छ अपभाषण करने वाले, अपभाषण नहीं करना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, जितने हो सकता है संस्कृत शब्द शुद्ध उच्चारण करें। तो यहाँ पांचजन्य ऋषि के सबूत समय पांचजन्य क्या है, अनुस्वार है, वहां उष्ट लगेगा, उष्ट लगेगा तो अशुद्ध हो जाए, पांचजन्यम ऋषि के सबूत देंगे तो गलत हो जाएगा, पांचजन्यंग अनुसार नाक से होगा, पांचजन्यंग ऋषि केशो, बोलो पांचजन्यंग, हाँ अनुसार उच्चारण होगा नाक से, ऋषिकेशो ऋषिकेश बोलना गलत है, पहले बताया था ध्यान रखना, ये नहीं होता है, कहीं पुस्तक में छपा हुआ तो अशुद्ध है, आजकल पुस्तक में छपाने लगे, क्योंकि छपाने वाले भी ये व्याकरण ज्ञान शून्य अथवा ये परंपरा ज्ञान रहित अपनी बुद्धि से कुछ करते हैं, पुस्तक में मुद्रित तो हो जाने मात्र से शुद्ध नहीं होता है, शुद्ध नहीं अशुद्ध है, पांचजन्यम ऋषिकेशो ऋषिकेश विसर्ग नहीं होगा। ये हो गया सोलह काश्यश्च परमेश्वातः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः काश्यश्च काशीराज काश्यश्च परमेश्वासः परम विश्वास जिसके जिनके हाथ पर है बाण धनुर्बाण परम धनुर्बाण विश्वास ईशु बाण को फेंकने के लिए धनु बड़े उत्कृष्ट है जिनके इसे पास शिखंडी च महारथ महारथ है शिखंडी ये भी कम नहीं है शिखंड शब्द का अर्थ है स्मश्रु शून्य दाढ़ी मुछ रहित हो तो उसको कहते शिखंड दाढ़ी मुछ रहित स्मश्रु शून्य अभाव यश्य अस्ति जिसके पास धन है उसको क्या कहते धनी धनवान कहते धनी भी कहते दंड है तो दंडी ज्ञान है तो ज्ञानी छत्र है तो छत्री और शिखंड जिसका है शिखंडी, शिखंड वाला स्मश्रु दाढ़ी मुछे का अभाव है, जिसमें अभाव है वो शिखंडी छ, किन्तु वो सामान्य ने महारत है, 1000 योद्धा को भी लड़ करके परास्त कर लेंगे। और धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्विकश्च अपराजित, सात्विक जो पराजित नहीं होने वाले, अपराजित किसे पराजित होगा तो अपराजित और अपराजित सात्विकश्च पराजित अपराजित हो, ये सब आगे आगे शंख बजाय उसके साथ संबंध आगे श्लोक में क्रिया बताएगा। शंखान तद्व पृथक पृथक, सब अपने अपने शंख को बजाए, इनका तो 6 का नाम बता दिया भगवान का और 5 का नाम बता दिया, और वो सब का सब पृथक पृथक शंख बजाए। श्लोक बोलो, काश्यश्च द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मः पृथक् पृथक्। द्रुपद द्रौपदी के पुत्र पिता, द्रौपदी के पुत्र को क्या कहेंगे, त्रिभ्यो ढक द्रौपदेय बन जाएगा, ढक पद्य होगा, द्रौपदी के पुत्र को क्या कहेंगे, द्रौपदेय, द्रुपद के पुत्री का नाम द्रौपदी और द्रौपदी के पुत्र का नाम द्रौपदेय द्रुपद, और आगे द्रौपदेयाश्च, द्रुपद और द्रौपदेया बीच में कौन है बताओ, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेया, यहाँ युद्ध में तो द्रौपदी नहीं है किंतु द्रुपद भी है, उनके पिता भी है और बच्चे भी है। सर्वसा पृथ्वीपते संबोधन पृथ्वीपते, संजय किसको पृथ्वीपते का संबोधन करते है, धृतराष्ट्र हे पृथ्वीपते उनको सुनाते हैं। सौभद्रश्च महाबाहु, सुभद्रा के पुत्र अभिमन, शंखान पृथक पृथक दध्मो, सब पृथक पृथक अलग अलग शंख सब बजाए, पृथक पृथक शंखान सब के पास सब बजाने लगे। अच्छा इसमें देखो, पहले काश्यश्च परमे श्वास विचार के यहां आगे क्या बन रहे, स है, इसी प्रकार यहां देखो सौभद्रश्च महाबाहु विचार के आगे क्या है, परमेश है तो विसर्ग हुआ, शंखान दध्मो पृथक पृथक विसर्ग आगे क्या है, प है वो, ख फ छ ठ तमें तो आ जाता है किंतु प फ क ख पर रहते विसर्ग उच्चारण होता है। सूत्र है कोई कुपो कपो च जिहा मूल्य उपद्वानी होता है, व्याकरण पढ़ने वाले जानते हैं, क ख परम हो प फ परम हो विसर्ग मिल जाएगा, और बात किस स्थान पर विसर्ग तो हमें स हो जाता है विसर्जन से स, किंतु ये वर्ण कभी रहते समय कौन ह य व र ल य म ग ये सब वर्ण है, झ भ घ ढ द ज ब ग ढ द ये वर्ण रहते समय कभी विसर्ग नहीं होता है, यहां विसर्ग उच्चारण ठीक है, संतो पृथक पृथक ये दोनों श्लोक बोल दिया, श्लोक द्रुपद बोल श्लोक द्रुपद पहले कौरव के तरफ से शंख ध्वनि होने से क्या हुआ, सशब्द तुमुल अभवत, भयंकर शब्द हो गया, इतना बात है ना, शब्द भय बहुत शब्द जोर शब्द हुआ था, किन्तु अभी देखो क्या हुआ, स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् पांडव के तरफ से जब शंख ध्वनि के बाद सघोष बड़े जोर से घोष शब्द हुआ, वो शब्द क्या क्या धृतराष्ट्रानाम हृदयानी व्यदारयत। धृतराष्ट्र से पुत्र धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र से पुत्र उनके पक्ष में जितने सब थे दुर्योधन आदि बाकी जितने सोए उनको हृदयानी बहुवचन सबके हृदय को व्यदार विशेषण अधारित विदारण कर दिया, पाट दिया, विदारण धारण विदारण सबको डरे कंपनी लगे फटने लगा, जिस हृदय से फटने लगे विदारण कर दिया, इतने शब्द हुआ भाग डर कर कंपने लगे, हृदय कंपने लगा ताड़ी ऊपर ऊपर से नहीं अंदर से। और उसके बाद नभश्च पृथ्वी तुमुरो व्यनि नादयन, वो वी अनु नादयन उसके पीछे शब्द करते तो दूर तक शब्द चलता है। कभी ये जो बड़े बड़े कथा में जो करते लगाते शब्द यंत्र लगाते हैं यहां शब्द करें तो दूर तक शब्द जैसे चलता है, पहाड़ जंगल में जाकर बोलो शब्द करो तो दूर तक शब्द सुनाई पड़ता है, कभी के थोड़ी देर बाद फिर आपको सुनाई पड़ता है, ऐसे फैल जाता है सब इतने शब्द करने लगो बुरा शब्द पृथ्वी से लेकर आकाश सब ब्रह्मांड में सब तरफ फैल गया। नभश्च पृथ्वी चैव त्यमुलो सब तरह शब्द करते हुए गुंजाते हुए ये उनके हृदय के डरा कर कंपने कंपाया था, कंपाया मान कर दिया। ये देखो उनके शब्द हुआ था तुम्हारा भयंकर हुआ था, पांडवों को भय हुआ था नहीं बताया कि ये शब्द ऐसे हुआ तो उनके हृदय से फटने लगे, ऐसे भयंकर हो गया और आकाश पृथ्वी सब व्याप्त हो गया, इतने शब्द हो गया। श्लोक बोलो अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। अथ व्यवस्थितान् धातराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कपिध्वजः पाण्डवः धनुरुद्यम शस्त्र संपाते प्रवृत्ते कपिध्वजः पाण्डवः धनुरुद्यम्य आगे के साथ संबंधी है। ऐसे शब्द होने के बाद धृतराष्ट्र के वीर ऐसे भय कर कांपने लगे, हृदय फटने लगा, तो भय कर भाग जाना चाहिए, इतने भय कर कंपने लगे तो हृदय फटने लगा तो नहीं रह कर भागना चाहिए, किंतु भागे नहीं खड़े रहे अपने स्थान में रहे, भय करने पर भी रहे स्थान में तो व्यवस्थित अपने स्थान में स्थित है। उनको देख करके व्यवस्थितान व्यवस्थित कौन थे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि उनके पक्ष में जितने थे अपने स्थान में डटे रहे। उनको देख करके देखा सो लोग खड़े है अतः युद्ध होने वाला है, अभी युद्ध करेंगे नहीं होने के बाद शस्त्र संपाते प्रवृत्ति शस्त्र संपात शत्रु का समुदाय अभी सब शत्र मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, युद्ध होने वाला है उसी समय प्रवृत्त समय हो गया, अभी सब शंख बजाने लगे था गए युद्ध होगा। पांडव धनुरुद्यम्य पांडव अर्जुन धनु को अपने लेकर के जोर से रख करके कागे कहते हैं, अर्थात जिस समय भयंकर शब्द होने के बाद भी दुर्योधन आदि व्यवस्थित रहे अपने स्थान पर डटे रहे खड़े रहे, तो उनको देखा अर्जुन ने कपिध्वज उनके ध्वज में कपि चिन्ह है कपिध्वज चिन्ह जी ने कहा, ऐसे पांडव धनु उद्धमन कर भन को उठा करके शस्त्र संपादित प्रभुते शस्त्र के समुदाय सब शस्त्र मारेंगे तो एक के बाद दूसरा उसके बाद तीसरा ऐसा होता है क्या, जब युद्ध होगा पहले एक मारेगा उसके बाद दूसरा तीसरा ऐसा है फुटबॉल खेलते सब एक ही फुटबॉल है, ये चला गया तो मारेगा, उसके बाद उधर जाएगा तो मारेगा उसको मारेगा। यहां युद्ध में ऐसा है, एक सर मारेगा उसके बाद दूसरे मारेगा उसके बाद तीसरे मारेगा, सब मारने लगे एकदम शत्र समुदाय, सब प्रभुत्व होने लगे, सब तैयार हो गए। जब प्रारंभ हो जाए युद्ध सब करेंगे, उसी समय पांडव धनुर्द्यम करते आगे। श्लोक बोलो, अथ व्यव श्लोक बोलो, कहते कहते कोई शुरू कर देते, जल्दी शुरू नहीं करना, सम्मिल करके श्लोक बोलो कहते समय अथ शुरू कर दिया, ऐसा नहीं, सब एक साथ बोलेंगे ना। हाँ बोलो, इसको फिर बोलो, अथ ऋषिकेशं तदा वाक्य मिदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे च्युत। ऋषिकेशं के आगे तदा बोलते समय उष्ट लगे या नहीं लगे? हाँ, बोलते समय ध्यान रखना, उष्ट लग जाते तो अपनी गलती, कोई चीज ने बोला था ऋषिकेशं तदा, ऐसा नहीं, ऋषिकेशं तदा वाक्य। यहाँ कोई कोई करते ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आहमहे पते, इदम को अलग कर देंगे, ये भी अशुद्ध है। ऋषिकेशं ऐसा कुछ लोग करते है, आप लोग नहीं करते, अच्छा है, जो लोग नहीं जानते जानना, कभी कभी इसे कोई सिखाने वाले इसे बोलेंगे, फिर आप बोलोगे हमारी गलती है, ऐसा नहीं। कोई कोई सिखाने वाले अशुद्ध उच्चारण करने वाले बहुत हो, क्या कहेंगे, ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम अहमहि पते, इसको बताएं, इसे बोलना चाहिए। मिदम आह क्या चीज, मिदम आह क्या है, इदम आह कहना चाहिए, इसे बताएंगे, फिर आपको लगेगा ये तो बड़े विद्वान है बोलते है, हमारी गलती है, ऐसा सोच कर फिर इसे करने लगे। ऐसा होता है, कभी कभी वो ठीक उच्चारण करते थे, कोई जाकर उनको बताया, बताने के बाद बोले हम तो इसे पहले करते थे, किंतु ऐसे सुना ऐसे बोलो तो फिर हम ऐसे परिवर्तन करके अभी ऐसे बोलने लगे। क्या बोलते है, ऐसे वाक्यम इदम आहमहि पते, इदम आह करके अलग कर दे, वो नहीं, वो ऐसे बताने वाले कोई बताए, समझ लिया उनको कितने ज्ञान है, समझ लिया, कुछ कहना नहीं, झगड़ा करने का नहीं, किन्तु अपने उच्चारण शुद्ध उच्चारण इधर ना प्रामाणिक है। पंचदश अध्याय बोलते समय इमें बोल देता हूं क्या कहां गलती करके लोगों को सिखाते हैं, गलत बताते हैं। हाँ, ये तृतीय श्लोक है, नरूपम से श्लोक तो याद है ना, बोलो नरूपम से तथ यहां क्या बताते हैं, ये मसंग सत्र क्या, मसंग सत्र क्या है, हंस हंसाएंगे, देखो कोई बोलेगा देखो ये लोग बोलते हैं मसंग सत्र ना, ये लोग बोलते हैं मसंग सत्र, मतलब जो लोग बोलते हैं उनको मालूम नहीं, जो लोग बोलते हैं ना कोई इसे आधुनिक अपने को दिखाने के लिए कहते पुराने विद्वान लोग क्या बोलेंगे, मसंग सत्र ना, मसंग क्या है, क्या है मसंग, कुछ मालूम है, असंग सत्रेण तो म कहा जाएगा, तो यहां कर देते अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ऐसा कोई बताते बताने वाले कहीं मिल सकते हैं, उनसे सावधान रहना, समझ लेना, उनका ज्ञान उसके अंदर है, जितने तक ज्ञान उसके अनुसार बोलेंगे, वो अशुद्ध बोले गलत सिखाए, किंतु आपको सीखना नहीं इसे गलत, प्रामाणिक उच्चारण करना। मसंग सत्र लिखा गया पुस्तक में, आजकल सब लिखने लगे अलग करके, म उद्धर करेंगे या असंग लिखेंगे तो भी प्रामाणिक नहीं है, प्राचीन पुस्तक देखना, नहीं तो क्या इतने मालूम नहीं था, मूल के आगे चिन्ह दे करके चिन्ह दिया आगे मसंग, मैं तुम्हारा रख सकते थे, बोलते समय अज्जिन वर्णम परण संयोज्यम, आगे अच नहीं हलंत है मकार तो आगे अ के साथ मिलकर बोलना, ऐसे नियम है व्याकरण में, नियम है। इसे बोलते समय यहाँ प्रामाणिक है क्योंकि थोड़े परंपरा ठीक चल रही, महात्मा लोग बताते उच्चारण ठीक है, फिर कहीं कहीं इसलिए गलत उच्चारण करने वाले, क्योंकि आने वाले जो आते हैं मालूम नहीं कौन किस कित कहाँ कहाँ तो उनका पहुंचे, कोई कोई गलत बता सकते, किन्तु इसे मसंग सत्र न पदच्छेद करके अर्थ व्याख्यान करते समय हम भी कहते कि आपको मालूम है असंग सत्र न, किन्तु श्लोक बोलते समय ऐसा पदच्छेद करने का नहीं होता है, श्लोक बोलते समय जैसे ऐसे बोलना और आगे पदच्छेद होता है, अदश्चोर्धम असंग अस्वस्थम एनम न रूपम अस्य यह तथा उपलब्धते, ऐसे पदच्छेद होता है। और श्लोक बोलते समय पदच्छेद क्यों बोलेंगे तो श्लोक बोलना होगा, तो इसे पदच्छेद नहीं करना होता है, जैसे ऐसे बोलना पड़ता है। तो इसी प्रकार यहां अभी जो श्लोक में था ऋषिकेश तथा वाक्य मिदम आह मालूम है वाक्यम इदम आह वाक्यम हे महीपते तदा इदम वाक्यम ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह कर्ता कौन है बताओ, किसने कहा इदम वाक्यम आह आह मतलब का नहीं संजय नहीं धनुरुद्यम में पांडव पांडव आह पहले पांडव कहते समय कहा था आगे के साथ संबंध है पांडव कर्ता पद है पांडव आह कर्म कौन है ऋषिकेशम इदम वाक्यम ये दोनों भी ऋषिकेश को कहा कह रहा है कौन कह रहा है संजय संजय धृतराष्ट्र बताते हैं कि पांडव ने ऐसे कहा ऋषिकेश को कहा पांडव अर्जुन ने क्या कहा अभी कहा मालूम है कहा क्या कहा कहा है नहीं आगे आएगा इदम वाक्य महा ये वाक्य कहा क्या वाक्य आगे बताएंगे अर्जुन ने जो वाक्य बोला वो वाक्य आगे बताएंगे संजय धृतराष्ट्र बताते हैं कि अर्जुन पांडव ऋषिकेश इदम वाक्य महा हे महीपते हे महीपते महीपति कौन है धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र को संबोधन कौन कर रहा है संजय कहता है महीपते धृतराष्ट्र बोल रहा है जब इसी प्रकार शस्त्र समुदाय तैयार हो गया उस समय पांडव धनुरुद्यम्य अर्जुन धनु को उठा करके तदा इदम आह वाक्यम आह ऋषिकेशम ऋषिकेश को ये वाक्य उन्होंने कहा किन्होंने कहा अर्जुन ये कौन बोल रहा है किसको संजय बोल रहा है हाँ ये थोड़ा ध्यान रखना और ऐसे बोलते समय ऐसे ध्यान रखना कौन किसको बोलता है इधर संजय बैठा है धृतराष्ट्र के पास क्योंकि यहाँ भगवान बोल रहे अर्जुन के पास और महाभारत सब सैन्य खड़े युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने की तैयारी सब लोग कहते हमारे पास समय नहीं कहाँ करके समय नहीं गीता सुनने के लिए और इनको समय है युद्ध क्षेत्र में अभी सब सत्र मानने वाले है मानने मरने का समय अभी हाँ गीता सुन रहे और आपके पास समय नहीं है इसे समय कभी आएगा समय जो समय है उसका सदुपयोग करना है यहाँ इस समय कहते हैं यहाँ तक ये वाक्य हुआ अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा करके वाक्य ये अर्जुन उवाच ये कौन कह रहा है हाँ संजय कह रहा है अर्जुन नहीं कह रहा है अर्जुन ने कहा अर्जुन उवाच संजय कह रहा है अर्जुन ने क्या कहा आगे अर्जुन का वाक्य इस श्लोक उच्चारण हो गया था ना से नय उभय मध्य रथम स्थापय में अच्युत अर्जुन कहता हे अच्युत उभयो हो सेनयोर मध्य मैं रथम स्थापय मैं का क्या अर्थ होगा मेरा हाँ मेरा हमारे रथ को स्थापन कराओ आज्ञा देता है वहां दुर्योधन तो उनके पास दौड़ा था आज द्रोणाचार्य के पास यहाँ अर्जुन अपने भगवान को जानता है उनको कहता है मेरे रथ को वहां रखो अभी सारथी बनकर है सखा भी है मेरे रथ को रखो कहाँ रखना उभय सेनाओं के मध्य युद्ध करने की तैयारी हो गई दोनों सेना के बीच में रखो अभी तो यहां रखो युद्ध करना चाहिए धनु सर मारने का समय हो गया शंख ध्वनि होने के बाद कहते दोनों के बीच में हमको रखो लेकर के रथ को लेकर रखो उभय हो सेनाओं के मध्य रथम स्थापय में अच्युत ही अच्युत संबोधन करते अच्युत क्यों है च्युत नहीं होते, आप अविनाशी स्वरूप से कभी च्युत होते नहीं, और स्वरूप में रहन से मर्यादा से भी कभी हटते नहीं, मर्यादा पालन करने वाले हैं, और अपने स्वरूप से कभी नहीं। ब्रह्मांड सारे जगत की उत्पत्ति तिथि प्रलय कुछ हो जाए, परब्रह्म परमात्मा अच्युत है, सर्प से चित्त नहीं होता है, सर्प तो इसे रहता है। रस्सी में सर्प भ्रम होता है, लोग डर कर भागे, हाथ पैर टूटे जाने पर रस्सी क्या करती है, रस्सी कुछ हो जाती है, रस्सी में कोई परिवर्तन है, रस्सी तो रस्सी है, किंतु आपको सर्प भ्रम होते समय रस्सी रहती है, सर्प रहता है भ्रम काल में, हाँ रस्सी हम हमेशा ही। इसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा अच्युत है, अपने स्वरूप से चित्त होते ही नहीं, हमारे सहायक रूप है, सच्चिद रूप है, ऐसे अच्युत आप अच्युत, मर्यादा के पालन करने वाले मर्यादा से हटते नहीं। इसलिए अभी युद्ध समाप्त हो गया तो भी अभी समय करो, रथ लेकर बीच में रखो, अब ये करेंगे, और वर्तमान सारथी बन कर आज्ञा पालन करना है नहीं, नहीं। क्योंकि आप अच्युत है, और ये आगे पूछना नहीं क्यों लेना क्या है, लेकर वध रखो, आदेश देते आप तो अच्युत हो, सबसे चित्त नहीं होते, लेकर उधर रखो, क्यों रखना है आगे बताते हैं। श्लोक बोलो, ऋषि केशं यावदेता निरीक्षेहं योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्य मस्मिन् रण समुद्यमे। वहां रथ कब तक रखना, यावत एतान युद्ध का अवस्थितान युद्ध कामान अहम निरीक्षे अस्मिन् रण समुद्र में कई सह महायुद्धव्यम तब तमें जब तमें देख लू, यावत एता निरीक्षे अहम एता निरीक्षे मैं जब तो इन लोगों को थोड़ा देख लू, बीच में रखो सबको देख लेंगे, यावत जब तक मैं इन लोगों को देख लू, निरीक्षे अहम किनको देख लेना है, अवस्थितान युद्ध कामान जो अवस्थित उपस्थित है, उपस्थित है किसलिए, युद्ध कामान युद्ध काम ये शाम ते युद्ध कामा युद्ध करने की इच्छा वाले, युद्ध करने के लिए खड़े है, युद्ध काम ये शाम ते युद्ध कामा तान युद्ध करने की इच्छा वाले जो खड़े हैं अवस्थित है, उनको थोड़ा मैं निरीक्षण कर लू देख लू अच्छी तरह से, क्यों ऐसा करना है बोलते, ये तो सब है सबको थोड़ा देख ले, और इनमें से कई सह महायुद्धव्यम ये सबको थोड़ा मैं देख लू, और इनमें से किस किस के साथ मुझे लड़ना है तो बहुत ही युद्ध होगा, मानने वाले भी बहुत ही, इनके पास कितना अक्षौणी है, सात अक्षौणी, केवल अर्जुन सबको मारेंगे क्या, ऐसे वो तो मारेंगे बहुत मारेंगे, किन 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 के साथ मुझे लड़ना है, कोई विशेष कौन कौन है किस किस को मैं मारू, इनको थोड़ा देख लू, कई सह कई सह मया युद्धव्यम किन के साथ मुझे लड़ना है, ये देखना है मुख्य सब है किन किस का लड़ना है, अस्मिन रण समुद्यमे रण का समय उद्यम हुआ प्रारंभ हो रहा है, इसमें किन किस के साथ लड़ना है उनको मैं थोड़ा देख लू। बोलो याव देता निरी युष्यमानानवेक्षेहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रश्च दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। Thank you. हाँ यहाँ देखो यस्यमाना नवे क्षे हं ये एक श्लोक में चार पाद होता है अनुसूप छंद है कितने अक्षर उसमें तो एक पाद में आठ अक्षर है यत्समाना नवेक्षे हम ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेकर के चल रहा है आठ अक्षर है यत्समाना नवेक्षे हम एक अक्षर किसको कहते मालूम है ये देखो पहले अंत में समागता क्या बोला मैं क्या बोला कितने अक्षर से बोलो चार अक्षर हैं साढ़े चार और कितने बोलो चार है एतेत्र एतेत्र कितने अक्षर है हाँ ठीक है त्र त्र में कितने अक्षर है एक अक्षर है हैं कोई कहते त्र में तीन है त्र में तीन कोई कहता है तीन क्या है बोलो तीन क्या चीज है तीन वर्ण है वर्ण और अक्षर को समझो त्र में तीन वर्ण है तीन वर्ण है त एक वर्ण है र एक वर्ण है अ एक वर्ण तीन वर्ण है किंतु अक्षर एक ही वर्ण अक्षर का भेद समझना एक स्वर वर्ण हो गया तो एक अक्षर पूरा हो गया और व्यंजन वर्ण उसके साथ अधिक रह सकता है आगे पीछे रह सकता है किंतु स्वर वर्ण में एक अक्षर हुआ इसलिए त्र में कितने अक्षर है ये वर्ण कितने तीन असमागता में कितने वर्ण है बोलो है? कितने मैं संख्या पूछ रहा विसर्ग के नाम लेता हूं विसर्ग मिलाएंगे तो विसर्ग मिलाए तो ना हो जाएगा विसर्ग दो बिंदु है अभी कितना हो जाएगा विसर्ग मिला करके आठ है स अ सकार अ म आ कितना हुआ ग अ त आ कितना हुआ आठ सौ चार के आठ हो गया हाँ विसर्ग विसर्ग एक हो जाएगा हाँ विसर्ग को अलग माना ठीक है आठ के आगे विसर्ग मिलाए तो नौ हो जाएगा विसर्ग मिला करके आठ नहीं विसर्ग के बिना आठ है विसर्ग मिलाएगा तो और एक नौ हो गया आपने कहा था नौ न कहने वाले खुश हो गए न कहने वाले कहते नहीं कहने वाले नहीं स में अ है म में अ है स मा चार हो गए सकार अ मिलकर स स में दो वर्ण एक स है और एक अ है माँ में भी एक मकार है और एक आ है व्यंजन वर्ण है सकार मकार और अ आ है स्वर वर्ण ग में इस प्रकार दो वर्ण है गकार अकार ता में भी दो वर्ण है त और आ आठ हो गए और एक विसर्ग है ना वो भी एक वर्ण है विसर्ग का उच्चारण अचह परऊ अनुसार विसर्ग अनुसार विसर्ग स्वर वर्ण के बाद होते हैं समा गता गता लंबा आ दीर्घ उच्चारण करके आगे विसर्ग दीर्घ उच्चारण करने के कैसे समा गता आ लंबा करके विसर्ग उच्चारण करना युत्स्यमाना नवे क्षे हं युत्स्यमाना नवे क्षे हं यहां एक पाद पूरा हुआ तो हं के आगे अनुसार उच्चारण करते समय म उच्चारण करना या नहीं म उच्चारण नहीं करना है क्योंकि यहां विराम नहीं है एक पाद के अंत में विराम नहीं होता है दो पाद पूरा हो तो पूर्ण विराम है मध्य में विराम नहीं होता है धातराष्ट्र से दुर्बुद्धेर देखो रेप है ना दुर्बुद्धेर है रेप धातराष्ट्र से दुर्बुद्धेर यहां कोई यदि विसर्ग बोलेगा शुद्ध होगा क्योंकि र के आगे क्या बनना है दुर्बुद्धेर रेप के आगे क्या है य के पहले कहीं विसर्ग नहीं मिलेगा देखो ढूंढो कहीं भी ग्रंथ में प्रामाणिका में पहले विसर्ग उसके बाद य इसे कभी नहीं मिलेगा य के पहले रेप को विसर्ग होता नहीं रेप को विसर्ग करने के लिए क्या चाहिए बाद में खर और अवसा विराम हो अथवा ख प चट आदि वर्ण हो य उसमें नहीं आता है इसे दुर्बुद्धेर रेप रहेगा रेप के उच्चारण इसे करना दुर्बुद्धेर वहां रेप को विसर्ग उच्चारण करना गलत है। कोई कोई कहते हैं यहाँ हम विराम कर देंगे, धातराष्ट्र से दुर्बुद्धेर विराम कर देंगे। कहाँ विराम करना, कहाँ मिलाकर बोलना, इसमें थोड़ा विचार नियम है। एक पद में जो वर्ण है उनको मिलाकर बोलना पड़ेगा। संहित एक पदे नित्या, एक पद में नित्य संहिता है। एक पद हिर्षि केशव एक पद है, कोई हिर्षि केशव दो बार करेगा बीच में रुक करके उठेगी नहीं, नहीं तो हिर्षि के शो नहीं होगा। अपनी इच्छा से हम करें ऐसा नहीं, एक साथ मिला करना पड़ेगा बोलेगा। संहित एक पद नित्या, एक पद में संहिता एक साथ है। जैसे हृदयानी, हृदयानी एक साथ बोलना है, हृदय अलग हो यानी अलग ऐसा नहीं, ऐसे अलग अलग करना नहीं। ये संहिता एक पद नित्या, संहिता एक पद नित्या, नित्या धातु उपसर्ग हो, धातु के साथ उपसर्ग है तो मिलाकर बोलना पड़ेगा। आगच्छ प्रकृत्य, प्रकृत्य नहीं उपगम्य, ऐसा नहीं उपगम्य, इसमें चिकित नहीं व्यनु, व्यनुनादयत वि अनुनादयत, व्यदारयत वि अदारयत, वि जैसे 19वां श्लोक में हृदयानी व्यदारयत वि है उपसर्ग, अधारयत क्रियापद है। धातु और उपसर्ग में संहिता एक साथ मिलाकर बोलना पड़ेगा। वि अलग कर देंगे अधारयत अलग, ऐसा नहीं होगा, मिलाकर बोलना पड़ेगा। समुद्यमे रहना, समुद्यमे सम उद यम समुद्यम, ये सो धातु उपसर्ग में भी जैसे आगच्छ, आगच्छ में आओ, गच्छ का अर्थ जाओ, आगच्छ का अर्थ आओ, यही का अर्थ यही जाओ, और आंग जोड़ दो तो क्या होगा यही मतलब आओ। एक गोपी का बिहार स्त्रोत्र है मालूम है, ए ही मुरारे कुंज बिहारे, बोलो ए ही मुरारे कुंज बिहारे, ए ही प्रणत जन बंधो, ए जन बंधो हे माधव मधु मथन भरेण्य, हे मथन भरेण्य केशव करुणा सिंधो, के सिंधु नहीं सिंधो, ए ही मुरारे कुंज विहारे। एहि प्रणत जन बंधो, हाँ जिनको याद है जो बोल सकते काल को कंठस्थर गाना बोलना, बोलने यही सुन कंठस्थर गीता स्त्र स्त्र रत्नावली में है गोपी का विरहिन स्त्र। एहि मुरारी क्या बोलते मालूम है, एहि मतलब आई आई हे मुरारे, एहि आई बुलाते, एहि मुरारे कुंज विहारे, तो ए ही का अर्थ आओ, आ और ई मिलकर ए ही हुआ शिव आ ई, व्याकरण में पढ़ाते शिव ए ही लघु कम दिवाता ना शिव ए ही आ ई, आ और ई हम मिलाकर बोलना पड़ेगा, आ अलग ई अलग नहीं है। धातु उपसर्ग में संहिता नित्य होती है, संहिता एक पद नित्या, नित्या धातु उपसर्ग ही हो, नित्या समास है, समास में संहिता नित्य है, अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे समास हो गया शस्त्र संपाति और युद्ध काम है, थोड़ा कठिन सरल देखना है। हाँ प्रिय चिकित्सा, प्रिय चिकित्सा आगे आएगा, प्रिय चिकित्सा अभी कौन सा है, तेईस चल रहा है, हाँ तेईस प्रिय चिकित्सा, प्रिय से चिकित्सा प्रिय अलग चिकित्सा चिकित्सा करना चाहते चिकित्सु करना जो चाहता है उसको क्या कहेंगे चिकित्सु प्रिय से चिकित्सु प्रिय चिकित्सु ऐसे राज्ञ पुरुष राजपुरुष प्रिय से चिकित्सु प्रिय चिकित्सु एक समास हो गया एक पद बने अभी प्रिय चिकित्सव ये कितने पद है बोलो एक ही पद माना जाएगा प्रिय अलग पद था चिकित्सु अलग पद था समास हो गया बन गया प्रिय चिकित्सु उसका प्रथम बहुवचन हो गया प्रिय चिकित्सव किन्तु बन गया एक पद बन गया एक पद में उसको संहिता करके बोलना संहिता का तो मिला कर बोलना अलग नहीं करना प्रिय अलग कर देंगे चिकित्सा अलग कर देंगे अशुद्ध हो जाएगा एक पद है राज पुरुष राजा अलग पुरुष अलग है किन्तु राजा का जो आदि में उसको क्या कहेंगे राज पुरुष राज्य पुरुष राज पुरुष तो वहां एक पद हो गया तो अलग अलग करके बोलना नहीं एक साथ बोलना पड़ेगा ये तीनों तो संहिता नित्य है संहित एक पद है नित्या नित्या धातु उपसर्ग हो नित्या समासे वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षते वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा करती संहिता बोलने वाली चाहता है तो मिला करके बोल सकता है छोड़कर बोल सकता है अत्र आगछतु आओ अत्र आगछ अभी छोड़कर हम बोलते हैं तो अत्र आगछ नहीं हुआ संधि के बिना भी हम कह सकते अत्र आगछन्तु अत्र यहां आई ऐसा लोक में हिंदी में ही बोलते हैं यहां आए आए यहां आ जाओ अत्र आगछन्तु अलग बोल सकते अत्र आगछन्तु अत्र आगछ मिलाकर बोल सकते वाक्य में अपनी इच्छा से मिलाकर बोल सकते है देवदत्त गच्छति देवदत्त विसर्ग कर दिया आगे कहें गच्छति बीच में रुक गया इसे कहा नहीं जाता है सातवें से नहीं मिलेगा तो वाक्य बोलते सब कोई यदि कहता है कभी एक बार रुक गया बीच में फिर बोलता है बोलने वाले के ऊपर निर्भर करता है ये इसलिए मैं बताता हूं यहां जो लोग विसर्ग करते हैं ना वो क्या बोलेंगे वाक्य में तो संहिता नहीं हम चाहेंगे तो अलग कर बोल देंगे विवक्षा धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे ऐसा कोई कहेंगे मतलब हम वहां विराम कर देंगे विवक्षा है बोलने वाली की इच्छा है किन्तु यहां वक्ता कौन है वक्ता यहां कौन है अभी अर्जुन कह रहा है व्यास जी लिख रहे हैं व्यास जी सच है यहां संजय बोलते हैं अर्जुन का वाक्य संजय बोलते अब बना है व्यास जी वो विवक्षा करने वाले वो यदि अलग कर कहते तो आपको अलग कर बोलना पड़ेगा और मिलाकर बोलते तो आप में और अपने हिसाब से हम अलग कर देंगे ये नहीं चलेगा वहां आप वक्ता नहीं कि आपकी इच्छा से विवक्षा वक्तुमिच्छा वक्ता की इच्छा है आप वक्ता नहीं है इसे आप इसको अलग नहीं कर सकते कोई बोलेगा हम वहां ऐसे एवं उक्त ऋषिकेश हो हम कहे केश विसर्ग कर देंगे इसका समय हो गया क्या नहीं अच्छा ऋषिकेश यहां विसर्ग हम कर देंगे क्यों विराम हो गया विराम नहीं कर सकते वहां ऋषिकेश बोलना पड़ेगा क्योंकि वहां वक्ता आप नहीं है वक्ता जी उनके इसलिए जैसे लिखा इसे बोलना पड़ेगा बीच में विसर्ग करना अशुद्ध है ये ध्यान रखना यही जो कहेंगे ना कोई से बोलेंगे वाक्य सा विवक्षा में अपेक्षा थे वाक्य में तो विवक्षा के अनुसार हम अलग अलग कर देंगे विराम कर देंगे उस समय बोलना कि वक्ता कौन है वक्ता आप है तो आप अलग अलग कर सकते वक्ता आप नहीं है जो वक्ता है उनको हम पढ़ते हैं अभी हम जो पढ़ते हैं मैं वक्ता नहीं मैं जो बोलता हूं वक्ता है उसका किंतु जो श्लोक बोलते समय वो जैसे लिखा है वक्ता हुए उसका हम उच्चारण करते हैं उच्चारण आप भी करते सब करते उनको वक्ता नहीं कहा जाता है वक्ता तो जिन्होंने कहा है इसलिए वहां दुर्बुद्धे क्या कि विसर्ग ठीक नहीं है इसी प्रकार ऋषिकेश ऋषिकेश आगे आएगा यहां ठीक नहीं विसर्ग उच्चारण ठीक नहीं है यस्यमानान देखो पदच्छेद करना पड़ता है बोलते समय तो अलग करेंगे यस्यमानान अवेक्षे अहम एते अत्र समागता य क्या है मालूम है य एकवचन ही बहुवचन ये समागता अत्र जो यहां आए ये में एकार था संदेह कर जो जानते हैं ऐसे होकर यह लोप हो गया, जो यहाँ सम्यक आए समागति कटी हुई, इनको मैं देखूं यावत युष्यमानान, जो युद्ध करना चाहते युष्यमान युद्ध करेंगे, चाहते नहीं युद्ध करने वाले करेंगे, युष्यमाना शत्रि होता है श्य लिटर सत सद तौ तो सत लिटर सद वाइसा लगता है सूत्र लिटर सद लिट लगा युष्यमाना ना मतलब अब युद्ध करने वाले करेंगे, उनको मैं देखूं अवश्य हम जो यहाँ इकट्ठे आए, और क्या करना चाहते है दुर्बुद्धेर धृतराष्ट्रस्य युद्धे प्रिय चिकित्सव, जो युद्ध में दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्र धार्तराष्ट्र होता है दुर्योधन, धृतराष्ट्र के पुत्र को क्या कहेंगे धार्तराष्ट्र, धार्तराष्ट्र से एक वचन दिया है किसके लिए एक वचन है कौन है दुर्योधन मुख्य है, दुर्बुद्धेर धार्तराष्ट्रस्य प्रिय चिकित्सव प्रिय करना चाहते है उनको थोड़ा मैं देख लू, जो दुर्योधन के प्रिय करना चाहते धृतराष्ट्रस्य पुत्रा धातराष्ट्र धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के प्रिय करना जो चाहते हैं युद्ध में दुर्बुद्धि दुष्टा बुद्धि सदुर्बुद्धि दुष्ट दुष्ट बुद्धि मूढ़ बुद्धि वाला दुष्ट बुद्धि दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र दुर्बुद्धि, इसलिए अभी सारे कुलों को समाप्त कर रहा है सबको मरवाता है अपनी गलती के कारण, अपनी दुर्बुद्धि से कितने लोग मर रहे हैं उसकी गलती से, वो यदि थोड़ा सा अहंकार छोड़ देता था महाभारत नहीं होता, किंतु दुर्बुद्धि उसके प्रिय करना चाहते दुर्बुद्धि जो व्यक्ति उसके जो प्रिय करना चाहते हैं वो क्या होंगे ठीक है, अभी दुर्बुद्धि जो है उनको थोड़ा देख लू क्योंकि आगे मानना है उनको थोड़ा मैं देख लू, ये तरह युष्य माना युद्ध करेंगे अभी जो कि धातराष्ट्र दुर्बुद्धे धातराष्ट्र से युद्धे प्रिय चिकित्सा युद्ध में प्रिय करना चाहते उनको थोड़ा मैं देख लू, तब तक ये रथ को लेकर के बीच में रखो, यहां तक वाक्य हुआ अर्जुन का वाक्य समाप्त हुआ। श्लोक बोलो यस्य मानानवे संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। रुक जाओ संजय से, संजय उवाच ए संजय उवाच, आगे संजय ने कहा, बीच में क्यों संजय ने कहा क्यों कहे, उसके पहले कौन बोल रहा था अर्जुन बोल रहा था, उसको नहीं छोड़ के एवं उत्तर कैसे कहेंगे, तो ये कौन बोलता है ये वाक्य, कोई सोचेगा ये अर्जुन बोल रहे एवं उत्तर कैसे गुड़ा कैसे न भारत स्थेन मध्य लेकर के ये अर्जुन बोल रहा है कौन बोल रहा है, हाँ इसे बीच में व्यास जी रख देते बीच में और सुनने वाले को भ्रम नहीं भूल नहीं जाए कौन बोलता है, प्रसंग भी थोड़ा ध्यान रखे, एकाग्रता चाहिए परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए, प्रमाद से नहीं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, तत्पर कौन है जो प्रमाद रहित प्रमत्त प्रमाद रहित, प्रमाद से प्राप्त नहीं होगा तो प्रमाद विचार करते समय सुनते समय दृष्टि में सामने आए कौन बोल रहा है कहाँ कैसा है चित्र बना ले बुद्धि में, धृतराष्ट्र बैठा है सिंहासन राजा में, संजय जाकर उनको बोल रहा है इधर युद्ध भूमि है रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण सारथी और अर्जुन बैठे और सब जोता बढ़े सब कहते उनको मेरे दोनों के बीच में लेकर रथ रखो, रथ इसे कहने के बाद संजय कहते किसको संजय कहाँ कहते धृतराष्ट्र बोल रहे एवं मुक्त ऐसा कहा गया ऋषिकेश, एवं मुक्त ऐसे कहा गया किसके द्वारा कहा गया किसने कहा ऋषिकेश को गुड़ा कैसे न गुड़ा कैसे कौन है अर्जुन गुड़ा कहते ऐसे मुद्रा अंगुष्ठ और तर्जनी ये गुड़ा ये बोल रहा ना गुड़ा अंगुष्ठ तर्जनी तर्जनी योगो गुड़ा नामनी तो मुद्रिका एक मुद्रा है अंगुष्ठ तर्जनी ये गुड़ा ये एक मुद्रा है जितने आसन के प्राणायाम में मुद्रा सो है ना कहीं मुद्रा है ये सब मुद्रा शास्त्र में मुनि ऋषियों ने बताई ये तो उसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति होती है और ये शरीर में भी उसके द्वारा उपकार होता है। एक मुद्रा के ऊपर किस मुद्रा आजकल कोई एक्यूप्रेशर नाम सुना होगा इसको दबाने से रोग निवृत्त होता है तो मुद्रा के द्वारा इसी के द्वारा भी दबाना होता है किस अंगुली में कहां जिस दबाने से किस रोग होता है एक यह है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी इसके द्वारा मन कैसे एकाग्र होता है शरीर के साथ मन का भी संबंध है पूरा शरीर में क्रिया होती है और प्राण चलता है प्राण भी शरीर में प्राण क्रिया से शरीर में क्रिया होती है और प्राण के साथ मन का संबंध है तो इसलिए कुछ योग के द्वारा रोग निवृत्त करते हैं योग के द्वारा प्राण को संयम करके प्राण को कहीं लगाने से शरीर में आरोग्य के लिए भी एक पद्धति है कहते योग के द्वारा रोग निवृत्त करते हैं तो इसलिए ये जो मुद्रा आदि बताई गई वो भी शरीर स्वास्थ्य के लिए उपकारक है जो मनुष्य ने पहले बताया था अभी ये लोग सीखते हैं और केवल मुद्रा नहीं प्राणायाम करते प्राणायाम करते मन एकाग्र होता है प्राणायाम एक साधन है इसे कुछ भी करे मन एकाग्र के लिए प्राणायाम करते हैं कभी कभी सुनते समय किसको आलस्य आता है नींद लग जाती है तो क्या करना चाहिए प्राणायाम करना चाहिए प्राणायाम नाक पकड़ के प्राणायाम करें तो सब लोग हंसेंगे नाक बिना पकड़े प्राणायाम हो सकता है हाँ बोलो हो सकता है हाँ प्राणायाम करना बीच में जिसको थोड़ा बीच में जल्दी से आ जाता है ना ऐसे देखो थोड़ा एक मिनट दिखाओ प्राणायाम कैसे कर सकते प्राणायाम करो नाक पकड़ना नहीं हाँ इसलिए बिना पकड़े प्राणायाम कर सकते ऐसे करेंगे तो निद्रा लगेगी निद्रा आती है बीच बीच थोड़ा ऐसे करना सावधान रहना हम तो कलाश आश्रम में बताए महात्मा देखो बैठे ना सीधा ऐसे बैठेंगे कुछ तो वृद्धावस्था में स्वास्थ्य होने पर उनको चाहिए कोई जो बैठ सकते हैं उनका भी शुरू से आजकल ऐसे अभ्यास हो जाता है जैसे आसन लाकर बैठ नहीं पाएंगे सब लोग कोई व्यक्ति आसन लाकर नहीं बैठ पाते कोई साधु बने गए पहले कहीं थे ऑफिसर थे ऐसे भी साधु बन जाते हैं कोई बड़े बड़े लोग आकर साधु बन गए बड़े मतलब बड़े संपन्न पढ़े लिखे व्यक्ति आते तो जब आसन लाकर बैठने कहे बोले हमें तो ऐसे कभी बैठे नहीं उनका आसन लाकर बैठना मुश्किल जैसे आपको पिछले बार बताया आपको मालूम है कितने लोग धोती पहनना मालूम नहीं है धोती अपने शास्त्र वस्त्र है पहनना मालूम नहीं है पहले विवाह के समय शादी के समय धोती पहनना था अब ये भी नहीं रहा ये भी विदेशी वस्त्र क्या अलग अलग पोशाक सिनेमा में जैसे पहनते सब बनाते धोती पहनना ऐसे भी आसन लाकर बैठना मालूम नहीं अब जो करते हैं पहले सीखते हैं आसन लगाते हैं तो आसन लगाकर सीधा बैठने पर एकाग्रता जो अपना नियम है ना आसन योग में आसन लाकर बैठो एकाग्र ऐसा रहो तो मन एकाग्र होता है और थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बैठे इधर उधर होते रहे तो मन भी इधर उधर होता है ये सब जितने परंपरा प्राचीन परंपरा शास्त्र में मनुष्य ने बताई सब प्रकार उन्नति के लिए आध्यात्मिक उन्नति और शारीरिक के लिए सब प्रकार उन्नति के लिए है इसलिए इसको थोड़ा शास्त्र परंपरा के अनुसार चलना चाहिए उनके गृह मुद्रा बताई गई ये मुद्रा नाम गुड़ा ये गुड़ा और गुड़ा के समान केस जिनका है जिनके बाल ऐसे घूम गया बाल होता है गुड़ा केस हो गया ये गुड़ा केस एक हो गया उनके केस अग्र केस केस अग्र भाग जिसे में है और गुड़ा के है निद्रा तो बाद में बताएंगे ये तो गुड़म गोलम अकति इति गुड़ा कहो गुड़ है गोल ब्रह्मांड गुड़ शब्द का अर्थ गोल ब्रह्मांडम अकति व्यापनति गुड़ाक शिव गुड़ाक अर्थ का शिव गुड़म अकति गुड़ाक गुड़ आगे अक गुड़ आगे अक हो जाए गुड़ाक बन जाएगा गुड़ का अर्थ गोलम ब्रह्मांडम गुड़म ब्रह्मांडम अकति व्यापनति अकति का व्यापनति ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाले हे गुड़ाक ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाले शिव स्वरूप है। गुड़ा के सर्जन कैसे हो गया? गुड़ा कह हो गया कौन? शिव। शिव ईशो यस्य, गुड़ा कह ईशो यस्य अर्जुन से, सर्जुन हो गया गुड़ा के सह। गुड़ा का अर्थ क्या हुआ? शिव। क्यों? गुड़ का अर्थ गोल ब्रह्मांड, उसको अकति, अकति का अर्थ गुड़म अकति, गुड़ अगे अक्र, गुड़ आगे आगे क्या है? अक, गुड़ आगे अक क्या बन गया? गुड़ा का, गुड़ का अर्थ हो गया ब्रह्मांड, उसको व्याप्त करने वाले अक गुड़ा क, गुड़ा का क्या अर्थ हो गया? शिव, ब्रह्मांड व्याप्त शिव, गुड़ा हो गया शिव है ईशो यस्य, शिव जी है जिसके ईश्वर, वो गुड़ा कैसे कौन हो गया? अर्जुन हो गया, अर्थात उनके शिव जी भक्त है अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण के पास है और ईश्वर भी शिवजी उनका ईश्वर है, गुड़ा के अर्जुन है। और गुड़ा का अर्थ निद्रा है, गुड़ा का उसके निद्रा को जीतने वाले गुड़ा के से भी जीत निद्रा, तो गुड़ा के से ना ऋषि के सूत उभयो सेनोर मध्य रथोत्तम स्थापित्वा, दोनों सेना के बीच में रथोत्तम रथानामोत्तम षष्ठ रथ को स्थापना करेगी। रथानामोत्तम रथोत्तम क्यों है? जहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी, रथ उत्तम नहीं होगा और उससे बढ़कर कौन रथ होगा? हीरा आदि जोड़ने से उत्तम हो जाएगा, दुर्योधन तो रथ उत्तम होगा। भगवान श्री कृष्ण जहां बैठे, भगवान श्री कृष्ण सबर के घर बैठेगे तो भी झोपड़ी भी उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है या नहीं? जब भगवान श्री नहीं राम जी गए थे, राम जी गए थे सब सबरी घर पहुंच गए, जहां सब भगवान स्वयं पहुंच गए वो घर श्रेष्ठ है या 50 मंजिली का घर श्रेष्ठ है बताओ? 50 नहीं, और बड़े बड़े और अधिक मंजिली वाले है वो घर श्रेष्ठ है, या जिस झोपड़ी में राम जी पहुंच गए खा रहे झूठा वेल खा रहे वो श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण बैठे तो उत्तम रथ को स्थापन करके, स्थापित्वा स्थापन करके आगे के साथ संबंध है। बोलो श्लोक। संजय उवाच ये भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षितान् उवाच हे पार्थ एतान् समवेतान् कुरुन् पश्य इति इति उवाच। भीष्म द्रोण सामने हे भीष्म द्रोण प्रमुखत, भीष्म द्रोण जिसमें मुख्य है, इसी प्रकार सर्वेषां च महीक्षितान् सारे राजा महीक्षित है राजा, महीक्षिता मही पृथ्वी को प्रतिवास करने वाले शासन करने वाले महीक्षिता राजा महीक्षिता सब सुनते हुए, भीष्म द्रोण मुख्य है सब राजा सुनते हुए भगवान ने ये भगवान ने कहा सर्वेशा महीक्षितान सारे राज्य के राजा सुनते हुए वहां अध्यार करना सुनताम, सब भीष्म द्रोण प्रमुख है और सारे राज्य सुनते हुए उनके सामने कहा हे पार्थ एतान समवेतान कुरुन पश्य इति उवाच, ऐसा कहा इति उवाच, इति उवाच कौन, किसने कहा उवाच, उवाच का कर्ता कौन है? ऋषिकेश उवाच एवं मुक्त ऋषिकेश, गुड़ा केशन एवं मुक्त ऋषिकेश उवाच। अच्छा ये ऋषिकेश उवाच तो हो गया, अभी किम उवाच, भगवान का वाक्य क्या है? भगवान ने कहा ऋषिकेश उवाच, ऋषिकेश ने कहा ऋषिकेश उवाच, उवाच का कर्ता हो गया ऋषिकेश उवाच, ये कौन बोल रहा है? संजय बोल रहा है ऋषिकेश उवाच, ये तो हो गया। किन्तु ऋषि कैसे किम उपाचे ऋषि के भगवान ने क्या कहा, अभी भगवान का वाक्य निकलना। देखो पार्थ शब्द यहाँ संबोधन है, पार्थ एतान समवेतान कुरुन पश्य इति जो है इति तो उवाच के साथ इति उवाच ऋषि कैसे इति उवाच ऋषि कैसे ने ऐसा कहा, क्या कहा भगवान का वाक्य, पार्थ एतान समवेतान कुरुन पश्य, इतने भगवान के वाक्य है। इति उवाच इति उवाच ऐसे कह रहा है संजय, उवाच का कर्ता कौन है, ऋषिकेश, उवाच का कर्ता ऋषिकेश, ऋषिकेश उवाच इति उवाच ऐसा कहा, इति उवाच कह करके संजय कहता है, पहले उवाच आ गया संजय उवाच, संजय का संजय क्या कहा, ऋषिकेश इति उवाच एवं गुड़ा केसन एवं उत ऋषिकेश इति उवाच, इति उवाच के पहले क्या कह करके भगवान श्री कृष्ण जो बोले ना, बोलने के पहले क्या किया, उभय हो सैन्य मध्य रथोत्तम स्थापित्वा, बोलने के पहले अर्जुन ने बोला, तुरंत बोल दिया नहीं, अर्जुन ने कहा है जब तक मैं देख लू वहां लेकर मेरे रथ को रखो, तो भगवान श्री कृष्ण वही बोलने लगे, बोलते रोको मेरा बनी भाग पहले सुनो मैं क्या करता, सुनो ऐसे कहा नहीं, पहले जो कहा वो काम कर लिया करके बोला, इसे कुछ कहते करेंगे तुरंत करो आज्ञा पालन करो उसके बाद बोलो, और नहीं सुन करके अपने कुछ बोलते रहे ऐसा नहीं, भगवान को कहा मेरे रथ को रखो और तुरंत उभय सैन्य मध्य रथोत्तम स्थापित भीष्म द्रोण प्रमुख तो सर्वेशम सबके सामने रख करके कहा, पार्थ एतान समवेतान कुरुन पश्य, रथ रख करके बताया, इति उवाच ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता दिया। श्लोक बोलो, भीष्म द्रोण यहां सर्वेशा में कितने वर्ण होगा बोलो, सर्वेशाम ये मामा जीत गए ये हार गई कितने आठ है, हाँ देखो अभी पहले पूछा था, अभी तेरे से स आगे र आगे व आगे ए आगे स आगे आगे अनुसार, हाँ आठ हो गया, ठीक हो गया, कितना अक्षर है, अक्षर एक है, अक्षर तीन है, अक्षर कितने है, तीन, और पद कितने है, क्या विभूति है, देखो मैं विभूति पूछता हूँ बहुचन के बोलते हो, ये भी बहुचन बोला, हाँ क्या विभूति है, सती, हाँ वचन पूछेंगे तो बहुवचन, क्या प्रातिपदिक है, हाँ सर्व, लघु पढ़ने वाले नहीं बता पाते, प्रातिपदिक क्या है, सर्व सर्वेशम, ठीक है वर्ण अक्षर को समझ लेना, पद एक है सर्वेशम, पार्थ है पार्थ, एतान कुरुन समवेतान, समवेतान क्या था, इकट्ठे हुए एकत्रित तो हुए कुरुओं को, कुरुवंश वाले को देखो, अच्छा इसमें भीष्म द्रोण प्रमुख तमें देखो, एक ही ध्यान रखना, भी तो दीर्घ है, भीष्म है, भीष्म के आगे क्या बनना, भीष्म में अंत में बनना है अ, भीष्म आगे क्या बनना है द, उसके आगे क्या है र, ये द और र दोनों व्यंजन बनना है, संयोग हो गया, इसलिए भी में भीष्म में जो अ है उसका उच्चारण होगा गुरु उच्चारण होगा, दीर्घ नहीं गुरु, क्या उस सूत्र है संयोगे गुरु, संयोग पर हो तो ह्रस्व को गुरु उच्चारण करना है, गुरु उच्चारण क्या है, भीष्म बोल करके द्रोण के दकार को भीष्म, भीष्म द्रोण कैसे बोलना, भीष्म द्रोण, भीष्म द इधर आ जाएगा फिर द्रोण बनना, बीच में भीष्मदा द्रोण ऐसा नहीं करना, द द में बीच में नहीं, भीष्म द्रोण प्रमुख आगे भी द्रोण में अंत में अ है, आगे प्र है उपसर्ग है, तो द्रोण में अ को भी गुरु करना, द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म द्रोण 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 प्रमुखतः, ऐसे सब स्थान में देखे ना, सर्वे सांस सिद्धांत, क्या बोलना, सिद्धांत सिद्धांत, हरि हरि शब्द का भ्याम में क्या बनेगा, हरि भ्याम, भ्याम में भव है तो क्या बनेगा, हरे भ्याम, हरे हरे भ्याम, हरे भ्य भ्याम में क्या बनेगा, हरे भ्य हरि अगर भ्य है क्या बोलना, हरे भ्य हरि में एक को भव करना, हरे हरे भ्य इसको गुरु उच्चारण करते, हरि भ्य करना गलत हो जाएगा, लंबा नहीं, हरे भ्य रामस्य 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 में मां में अगुरु उच्चारण हो जाएगा, तो ये थोड़ा उच्चारण करते समय ध्यान रखना है। गुरु शब्द का अर्थ तो मालूम है, गुरु शिष्य में अलग है, यहां जो गुरु है एक संज्ञा है, नाम है, उच्चारण में गुरु है, स्वयं के गुरु जो कहा ना, स्वयं पर गुरु उच्चारण होता है, गुरु उच्चारण होगा, गुरु उच्चारण उनसे एक हल्का है कि गुरु वजन, तो गुरु एक नाम है, हस्तम लघु स्वयं के गुरु, ये हस्तम लघु होता है, स्वयं के गुरु होता है, तो गुरु उच्चारण होता है, उच्चारण करते समय गुरु उच्चारण होगा तो हमें स्वरवर्ण है, लंबा करने से नहीं था, लंबा तो गुरु उच्चारण होगा किंतु तो जोर देने का, तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृन अथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखेस्तथा तत्र पार्थ अपश्यत, पार्थ करता है अपश्यत क्रिया है, उसी समय में युद्ध में पार्थ अर्जुन ने देखा, पार्थ अपश्यत तत्र स्थितान, तत्र स्थितान पार्थ अपश्यत, वहां स्थित को पार्थ ने देखा, स्थितान क्या विभूति है, द्वितीय विभूति, स्थित का स्थितान, स्थितान पश्य, वो जो थे वहां उनको देखा, कौन कौन किस किस को देखा, स्थितान कान पितृन अथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान तथा सखीन, इनको सब देखा, किसने देखा, पार्थ, पार्थ क्रियापद क्या है, पश्यत अपश्यत, पार्थ अपश्यत, कर्म क्या है, सब है स्थितान पितृन पितामहान सब कर्म है बहुवचन है, स्थितान तत्र स्थितान पितृन 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 में बहुवचन दिया, पितृव्य को लेना, पिता के भाई आदि को लेना, भूरी श्रवा प्रभुति आदि, पितामहान पितामह भीष्म है सोमदत्त इत्यादि, आचार्यान आचार्य है तो द्रोणाचार्य अन्य भी उनके समान है, मातुलान शल्य शकुनि आदि, भ्रातृन भ्राता तो है सब दुर्योधन आदि भ्राता भी है अन्य भ्राता है, पुत्रान लक्ष्मण अभिमन आदि पौत्र उनके भी पुत्र, सखीन अश्वत्थामन जयद्रथ आदि, इन सब को देखा, किसने देखा, हाँ पार्थ अपश्यत देखा, कौन बोल रहा है, हाँ संजय बोल रहा है, श्लोक बोलो, तत्रा पश्य ससुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ससुरान् सुहृदश्च ससुरान सबके ससुर सुहृदहे कृतवर्म भगदत्त आदि सात्विक आदि जो उपकार की अपेक्षा नहीं करके प्रिय करने वाले सुहृद होता है ये सेना उभयोरपी सेना यो इनको सब देखा अपश्यान तत्र स्थितान उभयोरपी सेना यो स्थितान अपश्य सब दोनों सेना में थे उनको देखा ये अपने सेना क्योंकि दोनों के बीच में क्यों रहा दोनों सेना में कौन को उन्हें देखना है उभयोरपी सेना ने इनको देखा तान समीक्षा उनको देख करके सम्यक समीक्षा समीक्षण करके सम्यक अच्छी तरह से देख करके ऊपर ऊपर से नहीं अच्छी तरह से देख लिया पूरा देख करके समीक्षा देखने वाला कौन है हाँ यहाँ आएगा कौन थे स कौन थे कुंती पुत्र कौन थे अर्जुन है किसको देखा यहाँ कहते सर्वान बंधु अवस्थितान सर्वान बंधु सब उसका नाम ले लिया पितृ पुत्र आदि अभी देखा सो तो अपने बंधु ही है अब सर्वान बंधु अन्य लोग भी तो है सारे बंधु भी सब खड़े इधर इधर कुछ इधर कुछ सारे बंधु खड़े हैं बंधु आगे क्या होने वाला है युद्ध होने वाला है युद्ध होने से कोई मरेंगे बहुत कितने मरे ये सब देखा यही सब युद्ध में युद्ध होने वाले मरने वाले सब देखा देखा तो अपने सब है देखने पर अब क्या देखता क्या हुआ परया कृपया आविष्ट बड़ी कृपा उसमें प्रविष्ट हो गई जैसे ग्रह किसके अंदर प्रविष्ट हो जाता है कोई भूत प्रेत आदि कहीं प्रविष्ट हो जाता है वो जैसे करता है ऐसे नाचता है ऐसे कहता है कृपा इस प्रकार अपने आ गई कभी कभी सुनते समय कोई रो लेते हैं कोई उनको रुलाने के नहीं अपने आप आ गया भाव विहोर होकर भगवान का नाम लेते समय कभी रो लेते हैं दुख में कभी आ गया कभी देखते बोलते बोलते कोई भक्ति के ज्ञान भक्ति विचार करते मन से जो उन्हें क्या करना चाहिए कहते हैं तो कोई देखते हैं रोने लग जाते कि हम कुछ नहीं कर पाए समय चला गया क्या करेंगे ऐसा किसको रोना आता है ना नहीं देखे कितने लोग होते रो लेते हैं वो कहां से आ गया उसको रोक नहीं सकते चाहेंगे उसको रोकने के लिए छिपाने के लिए कभी कभी ऐसा होता है चाहेंगे हम रोकने के लिए रोक नहीं पाएंगे कलकत्ता में एक पंडित जी हमको चातुर्मास कर रहे थे भागवत कथाकार भगवत सन शास्त्री बड़े अच्छे विद्वान भक्त है और पाठ हम वेदांत श्रवण किया सुनते समय भागवत प्रश्न लेकर कई बोलेंगे और बोलते समय इतने भाव से बोलते तो वो भी रोते हैं और दूसरे को सुनने वाले को रुला देंगे हमने देखा इतने भाव से बोलते होते इतना आंख हंसू कोई ऐसे प्रवक्ता में देखा बोलते तो लगता है जैसे रोते हैं दूसरे को रुलाते हैं क्यों स्वयं रोते नहीं है पास में देखा कोई व्यक्ति से बोलते तो लगता है जैसे रो रो कर बोल रहे और स्वतः भी रोएंगे किंतु वो रोही नहीं रोते किंतु ये जो मैं पंडित जी इनके बारे में बोल रहा हूं विद्वान थे ब्राह्मण थे वो रोते सचमुच रोते थे इतने रोते थे बोलते समय तो बोलते थे सुनने वाले भी रोलेंगे मतलब इतने भाव से बोलते ऐसा होता है तो अपने जिस प्रकार ईशा अर्जुन में परया कृपा आविष्ट कृपा प्रविष्ट हो गई अपने आप कहां से जैसे आ गई आविष्ट मतलब आवेश आ गया आवेश आने पर फिर बाद में दुख लगेगा ये सो विचिदन इधम अभ्रवित दुख करते दुखी तो होते ये इतने अर्जुन ने कहा ये देखा इनको देख करके अर्जुन स्थिति अपनी स्थिति बताएगा भगवान को देख करके सब देखा बड़ी कृपा आ गई दुख हो गया दुखी होने के बाद अभी धनु तो ले रहा था युद्ध करने के लिए, दुखी होकर के आगे क्या संबंध है, इसलिए इसमें तीन आधा 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 कर एक बार आ गया। श्लोक बोलो, ससुराम अर्जुन उवाच दृष्टेमं सजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।
अर्जुन उवाच समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते।
किसने बंद किया था? जो बंद करना है बंद करता है वही चलाएगा, जो सृष्टि करता है वही प्रलय करता है, जहां से उत्पन्न है वहां लीन होता है। जितने समय गीता सुनते समय जैसे मता ऐसा सुना आपने तो भक्ति हो या नहीं बताओ। यदि इसे भगवान के सामने दृष्टि रख करके सुना है, इसे सुनते समय इसे सामने चित्र बना करके सुनना है, किस अवस्था में भगवान है, किस अवस्था में अर्जुन है, कहाँ खड़े है और धृतराष्ट्र के पास बैठा है कैसे, संजय बोल रहा है इधर कैसे, ये सामने रख करके बोलना। भक्ति का अर्थ है भगवान का चिंतन करना है, नाम जप करते करते परमात्मा के स्वरूप चिंतन करना है, ध्यान करना है मन एकाग्र होकर के। इसी प्रकार ये प्रसंग से सुनते सुनते इसे ये चित्र बनाए एकाग्र होकर के, उनके वाक्य का श्रवण करे पुण्य होगा, साक्षात तो उनके वाक्य का श्रवण करे, उनके भक्त किसी को लाए देखे तो इसी प्रकार श्रवण करने पर उसे भक्ति उपासना होती है, इसे परमात्मा बहुत प्रीत होते। आगे बताएंगे ये गीता के श्रवण से क्या लाभ है, आगे तो बताएंगे। तो इसमें ऐसे भावना से तत्पर होकर के श्रद्धापूर्वक श्रवण करते समय एकाग्रता होकर के थोड़े थोड़े गुरु जी कुछ कहते भगवान कुछ कहते उनके वाक्य पद ए अर्थ एक एक पद को अर्थ को समझे, समझकर हृदयंगम करे, एक एक पद में एक एक नाम में ये नाम क्यों लिया, ये संबोधन क्यों कहा कही, एक बार तो कौंते कह दिया, एक बार कह दिया पार्थ, कहीं कुछ नाम, कभी पांडव अलग अलग नाम लेते, तो ये सब कहते तो कहते समय उनका थोड़ा सा ध्यान करे चिंतन करे, तो इतने श्रवण करने से ही बहुत पुण्य होता है। जो पुण्य यदि उसके फल आप नहीं चाहो भगवान से तो ही पुण्य क्या करेगा, अंतगुण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन बन जाएगा, ज्ञान प्राप्ति करा देगा। इसे कुछ भी कर्म करते समय इच्छा नहीं करे, श्री कृष्ण अर्पण वस्तु करके उनको भगवान को अर्पण करके श्रवण करे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति।
नमः पार्वतीपते हर हर महादेव।